अब एक और मिसाल ध्यान में रखिए, और अपने पेज पे अगर आप लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ इसको लिखना शुरू कर दें। वह और यानी एक और एग्जाम्पल है क्या, मिम्मा युकिदूना, उसमें से जो तुम तपाते हो। ये जो लफ्ज है ना युकिदून, वकदा से किसी चीज को पिघलाना, मेल्ट करना, अलैहि फिन्नारी, उसको आग पर, मुराद है जिन धातों को ये लोग आग पर तपाते हैं। आपको पता है ना कि धात क्या होती है इंग्लिश में बोल दें, मेटल्स। जब भी मेटल से कोई काम लेना हो तो क्या किया जाता है, पहले उसको मेल्ट किया जाता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मिल है, स्टील मिल्स, वहाँ सारा लोहा पिघलता है, फिर स्टील में बदलता है, फिर उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो कहते हैं कि लोग धातों को पिघलाते हैं। क्यों पिघलाते हैं, कहाँ पिघलाते हैं, आग पर। वाय इब्तिगा हिल्यति, उसमें से जेवरात लेने के लिए। हिल्या हुलीश जेवर को कहते हैं, ठीक है, जो हम ख्वातीन बड़े शौक से पहनती हैं। यानी जब किसी धात को पिघलाते हैं किस लिए, कि नंबर एक के उससे जेवरात बनाए जाएं, औ मताइन, या कुछ दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, मसलन हथियार बनाने के लिए, पतीलियां बनाने के लिए। लोहे से आप देखिए कि अमूमन ये चीज़ें बनती हैं, और सोने से अमूमन जेवरात बनते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त क्या होता है, जब उस मेटल को तेज आग पे पकाया जाता है ना, तो जबदुम मिसलुहु, इसी तरह की झाग उसके ऊपर भी आ जाती है। कभी आपने मेल्ट होती हुई कोई चीज़ देखी? एक चीज़ मैंने देखी हुई है, कभी आपने बचपन में गुड़ को पिघलाकर वो गचक सी बनाई होगी। जो ही आप गुड़ को आग पे रखते हैं ना हल्की आंच पे, तो वो पकता है, तो उसके बाद ऊपर ऊपर झाग है। और उस झाग में क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई कंकर, कोई तिनका, कोई उसमें मिट्टी का जरा, वो सब ऊपर आ जाता है। और आप अगर चम्मच उसको ऊपर से उतारें तो नीचे से निथरा हुआ मीठा पानी आ जाता है। यही मुराद है कि जब धातों से कुछ फ़ायदा लेना होता है तो धात को पिघलाया जाता है। सोना जब जेवर में ढलता है ना, तो आपको पता है कि उसको पिघलाते हैं। सोने में जितना भी खोट होता है ना, वो सब ऊपर आ जाता है, और जो असल प्योर गोल्ड होता है वो नीचे आ जाता है। कहा कज़ालिका यद्रिबुल्लाहुल हक्क वल बातिल, इसी तरह अल्लाह ताला हक को बातिल से टकराता है। कैसे, फामज़्ज़बदु, अब ये जो झाग थी दोनों सूरतों में, समंदर की सतह पे थी या इस धात के पिघलाने पे एक ऊपर आ गई, उससे क्या बनेगा, फयज़हबु जुफान, वो तो खुश्क होकर ज़ाया हो जाता है। और अगर उर्दू में एक बड़ी पोइटिक ज़ुबान बोलो ना, तो हमने एक लफ्ज़ सुना होगा वफा के मुकाबले में जफा। जफा किसको कहते हैं, बेवफाई करना, ये जफा वही लफ्ज़ है कि जो झाग है ना वो तो जफा कर जाता है, किसी काम नहीं आता। कभी झाग से आपने सुना कुछ बना, वो तो मैली होती है, कुछ नहीं, वो है थोड़ी है या ज़्यादा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वामयन फाउन्नासा, और जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद होती है, जो लोगों को नफ़ा देती है, फयाम को सुफेल अर्थ, वो तह में ठहर जाती है। पहली सूरत में क्या है जो तय में रह गया, साफ पानी, और दूसरी सूरत में वो धात, वो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जो नीचे प्योर फॉर्म में रह जाता है वो लोगों को फ़ायदा देता है। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहुल अम्साल, इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है। कैसे बयान करता है मिसालें, कि इस कायनात में हक को ही सुबात है, वही बचेगा जो लोगों को फ़ायदा देगा। बात समझ रहे, ये फितरत का असूल है। आप देखिए कि हम खाना खाते हैं ना, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। बस हम प्रोटीन मिलता है उससे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलती है, लेकिन हमारे खाने के अंदर से कुछ एसिड्स निकलते हैं, यूरिक एसिड, फुला फुला। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक शख्स खाना तो खाए तो उसके जिस्म से वेस्ट्स ना निकलें, क्या हाल हो जाता है। तबीयत कितनी बोझल होती है जब इंसान का पेट बोझल होता है और वो फारिग ना हो सके। फितरत का असूल है कि खाने में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो जिस्म ले लेगा, जिसको जहाँ जो चाहिए। हड्डियाँ कैल्शियम ले लेती हैं हमारा, इसी तरह जिस्म की वो चीज़ें जो जहाँ चाहिए होती हैं वहाँ चलती हैं, और जो गंदगी, खराबी, एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, वो सब जिस्म से दिन में दो तीन बार निकल जाती हैं। ये फितरत का असूल है, यही अल्लाह का असूल इंसानों के साथ है। वो लोग जो इस दुनिया से बगैर कोई काम किए चले जाएंगे, फयज़हबु जुफान, उनको तो कल कोई नहीं याद करेगा, बेकार थे। चूंकि अपने लिए जी रहे थे, खूब जिए, आज मरे कल दूसरा दिन, ज्यादा से ज्यादा उनकी कब्र पे जाके बच्चे रोएंगे, या शोहर रोएगा, या माँ बाप में से कोई होगा तो रो लेगा, और चंद दिन के बाद सबको सब्र आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हदीस में आता है कि जब वो फौत होते हैं तो ज़मीन के वो टुकड़े भी रोते हैं जहाँ वो नेकी करते थे, और आसमान भी रोता है। आगे हम कुरान में पढ़ेंगे ये बात इंशाअल्लाह ताला, कि आसमान रोता है। कुछ लोग हैं जो ज़मीन पर रहते हैं तो कायनात उनके लिए दुआएं करती है। ये कौन से लोग हैं? वाम ममायन फोन्नास, जो लोगों को नफ़ा दें। आज नाम लोगों के देख लीजिए, दीन के नाम में से भी देख लीजिए और दुनिया के नाते से देखिए। हम पहले दीन की बात कर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्यों उनका नाम बाकी है? कुछ उन्होंने लोगों को दिए, इंसानियत को दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह का दीन फैलाते रहे। हज़रत मूसा, ईसा, और सबसे बढ़ के नबी सल्लम, जिंदगियां लगा दी ना, तो आज भी उनका नाम मौजूद है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आइमा कराम, इमाम बुखारी, हम जानते हैं अगर इमाम बुखारी इतनी मेहनत ना करते इल्म के मैदान में, चारों आइमा कराम, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला, इमाम शाफी रहमहुल्ला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला, इमाम मालिक रहमहुल्ला, क्यों आज लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वाम ममायन फाउन्नास, उन्होंने मेहनतें की, कोशिश की। आज तक कभी आपने किसी को अबू जहल के लिए रोते देखा? फिरौन की याद में कोई धाड़े मार के रो रहा? कभी नमरूद के नाम पे कोई खैर की बात सुनी? क्यों? उसकी वजह अल्लाह ने हमारे सामने रख दी। फमज़बद फयस खबू जुफान, एक पैगाम है कि इससे पहले कि तुम कब्र में जाओ और कब्र की मट्टी तुम्हें खा जाए, कुछ करके जाओ। कोई दरख्त भी अपना बीज छोड़ने से पहले दुनिया से नहीं जाता। फितरत का असूल है कि कायनात की हर चीज़ अपनी तौफीक के मुताबिक कायनात को सर्व करती है। जब तक साया दरख्त दे सकते हैं, देते हैं, जब तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बीज दुनिया में इस तरह से छोड़ देते हैं कि उनके बाद दोबारा उन बीजों से खैर पैदा हो सकती है। हम सब इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा बाबरकत किताब पढ़ रहे हैं। सिर्फ इसको एक लेक्चर ना समझें, अगर किसी जगह क्लास में बैठ कर इल्म हासिल नहीं किया, इस लज्जत को करके देखिए महसूस। अब हम क्या ले रहे हैं इस वक्त? द बेस्ट थिंग, आप इसको समझिए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बारिश नहीं होती, मसलन थर के इलाके या दनान का इलाका अफ्रीका में, जो कि बारिश रुकी तो ज़मीन की सब खूबियाँ ख़त्म। हम सब भी तो इसी तरह के नहीं थे कल तक, क्या था हमारी ज़िंदगी का मकसद? वजह क्या थी कि हमारे पास ये वही इलाही नहीं थी? अब अल्लाह ताला ने आपको पढ़ने की तौफीक दी, आज आप 13वें पारे की इस आयत को पढ़ रहे हैं। ये वही इलाही का 13वां पारा है आपके ऊपर, तो क्या अब इसके बाद आपके अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए? क्या ये किताब हमें ये नहीं सिखा रही कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाएं कि अपने बाद लोगों को फ़ायदा दें? याद रखिए कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में सिर्फ उस शख्स को और उस कौम को जगह मिलती है जो दूसरों को नफ़ा देता है। मसलन देखिए न्यूटन, क्यों लोग जानते हैं न्यूटन को? वाम ममायन फोनस, एडिसन मेहनत करके गए ना, जो इन्होंने इंसानियत को दिया लोग आज इनको याद करते हैं, जो दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं उनको कोई याद नहीं करता। तो खुद से पूछिए, मेरी ज़ात से दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? और अगर इसको थोड़े से छोटे सर्किट पे ले लीजिए एज अ मुस्लिम, तो मेरी ज़ात से अल्लाह के दीन को क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं अपनी ज़ात से अल्लाह के दीन को क्या फ़ायदा दे रही हूँ? मैंने एक जगह ये सवाल पूछा सिस्टर से, ऐसे ही बैठे हुए, शुरू में दर्द जब भी होता है तो पहले लोगों से पूछती हूँ फिर बताती हूँ। तो मैंने कहा, सिस्टर्स आप ये बताइए कि सुबह से अब तक आपने दीन के लिए क्या किया? तो जवाब बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुवाफिक था, लोगों ने वही बताया, सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, दुआएं पढ़ी, कुरान पढ़ा, यानी लोगों को पता था कि ये यही सुनना चाह रही हैं कि नेकी का क्या किया। फिर बच्चों को नाश्ता दिया, ये वो सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सब ने जब अपनी ज़ाती इबादत की बात की तो मैंने कहा कि सिस्टर्स आप मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल क्या था कि आपने सुबह से लेके अब तक दीन को क्या दिया। अगर आपने नमाज़ पढ़ी है तो ये आपने अपने लिए पढ़ी है, अगर आपने सुबह शाम की दुआएं पढ़ी इट्स योर प्रोटेक्शन। अब मेरे इस सवाल से ना वो ज़रा कॉन्शियस हुई कि जवाब इतना आसान नहीं है, कहती ये तुमने कभी सोचा भी नहीं है। हम तो दीन को फ़ायदा यही समझते हैं कि हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का दीन ऐसे, जैसे एक बच्चा आप इमेजिनेशन में लाएं कि किसी का बच्चा है बीमार है, माँ को क्या करना होगा, उस बच्चे को गोद में ले और उसको दवा पिलाए। कभी आपने किया कि बीमार बच्चे को देखा कि अच्छा तू बड़ा बीमार है, मैं दो नफिल पढ़ के आती हूँ। बच्चे को भूख लगेगी तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, क्या आप उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत जमात करें और उसको खिलाएं। बच्चे को खाने की ज़रूरत है, आप कहते हैं तुम ये कर रहे हो, चलो मैं जाके ज़रा एक वजीफ़ा ना कर लूँ आधा घंटा जाए नमाज पे बैठ के। आज अल्लाह का दीन एक निगलेक्टेड बच्चा है। जब तक हम अल्लाह के दीन को अपना न्यू बोर्न बेबी नहीं समझेंगे, दूध पीता बच्चा नहीं समझेंगे, हमें ये बात समझ ही नहीं आएगी कि आज के दौर में दीन को हमसे क्या चाहिए। आप इस बात की गवाही देंगी कि माँ सबसे ज़्यादा कॉन्शियस दूध पीते बच्चे के लिए होती है। वो भोली भाली लड़कियाँ जो माँ के घर में कभी उठी नहीं बिस्तर से, जिनकी नींद इतनी पक्की है, वो बच्चे की छोटी सी छूं से उठ जाती हैं रात को, उठ उठ के देखती हैं कि ये भूखा तो नहीं, इसकी बाजू तो नहीं मेरे नीचे आ रही। किस चीज़ ने उस सीधी सीधी बच्ची को एक जिम्मेदार माँ में बदल दिया, उस बच्चे की मोहब्बत ने। पतली पतली बच्चियाँ होती हैं और इतने मोटे मोटे बच्चे उठा उठा के फिरती हैं सारा दिन। आप किसी का बच्चा थोड़ी देर लाड में पकड़ भी लें लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं अल्लाह करे ये रोए और इसको मैं दूँ माँ को, ऐसे ही है ना। फिर ना कोई रोए तो आप चुटकी भी काट देते हैं कि दे दो इसको, ज़रा ये रो रहा है इसको ले लो, क्योंकि हंसता बच्चा सबका तो रोता बच्चा माँ का। आप ज़रा अपने नोट्स में लिख के देख लें कि अगर अल्लाह के दीन को आज हम एक बच्चे से तशबीह दें, आज इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आज अल्लाह के दीन को हम मुसलमानों के, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं करती, ज़रूरत भी कोई नहीं, आज अल्लाह के दीन को हम मुसलमानों से सबसे फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग जो चाहिए ना वो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तो बच्चा पैदा होता है तो घर वाले सारे मुंतज़िर होते हैं, क्या पैदा हुआ, मैं नाना बन गया, मामू बन गया, खाला बन गई, पुप्पो बन गई। आज हमने इस दीन को प्यार देना छोड़ा है ना, तो आप देखें कि ये ऐसे लगता है निगलेक्टेड किड। आज दीन के नाम पे क्यों इस तरह का तसव्वुर आता है कि बहुत रिजिड, क्योंकि जिन बच्चों को बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती ना वो बड़े होके बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, कहते हमें नहीं मिली हम भी नहीं किसी को देंगे। तो ख़ुद से पूछिए क्या मुझे अल्लाह के दीन से उतनी भी मोहब्बत है जो मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए केयर, उसका ख्याल रखें, उसको साफ करें। बच्चे गंदे होते हैं, माएँ नहलाती हैं, उनके नाखून काटती हैं, कभी उनके सर में तेल डालती हैं, कभी उनकी नैपी चेंज करती हैं, कभी उनको पाउडर लगाती हैं। क्या अल्लाह के दीन के ऊपर आज आपको गंदे धब्बे नहीं दिखते? कोई आपके बच्चे को कुछ कह के तो देखे, फिर हम उस बच्चे का दिफा करते हैं। तो आज दीन को हमारी तरफ से दिफा की भी ज़रूरत है। क्यों हर उंगली उठती है इस्लाम पे? क्या मुसलमान इतने बुरे होते हैं? क्या इस्लाम इतना बुरा है कि आप इसको टेररिज्म कह दें? क्या इस्लाम इतना नाकाबले बर्दाश्त है कि लोग इसको हूं करके गुजर जाएं? तो आज इस दीन को केयर भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, आपका वक्त भी चाहिए। सबसे ज़्यादा हम अपने बच्चों को पता क्या देते हैं? वक्त देते हैं, अपनी सोच देते हैं, दिल देते हैं। एक मोमिन की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि हर वक्त उसके दिल दिमाग में अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन। माएँ करती तो सारे काम है, खाती भी है, पीती भी है, सोती भी हैं, वॉशरूम में भी जाती हैं, लेकिन दिल कहाँ अटकाता है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये सोच रख के अगर आज अल्लाह का दीन समझेंगे तो फिर आपको कभी गफलत नहीं आएगी, आप नींद की वजह से इस दीन को नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी सिर्फ आराम की खातिर उसको नहीं छोड़ेंगे। कभी ऐसा हुआ कि माँ किसी पार्टी में चली गई, घंटे के लिए गई थी और चार घंटे लगाए कि मज़ा बड़ा आ रहा है पार्टी में हो, और बच्चा पीछे भूख भूख से बिलक बिलक के रो रो के आसमान सर पे उठा दे, फिर आप गाफिल नहीं हो सकते। यही कैफियत एक ईमान वाले की होती है, वो दुनिया में किसी जगह भी मौजूद हो, आप उसको किसी मॉल में भेज दें, आप उसको किसी बेहतरीन किस्म के तफरीही मरकज में भेज दें, उसको हर लम्हे ध्यान अल्लाह के दीन का होता है, फिर आप देखिए कि अल्लाह आपको कितनी खैर देता है। ये दुनिया क्या है? ये महल है, ये जबद है, जुफान, ये बिल्कुल चला जाएगा। आज दुनिया में जो हाथों का मैल है, उर्दू में कहते भी है ना, माल क्या है? हाथों का मैल। और आप कहते हैं कि लफ्ज़ माल क्या है? माल यमीलू मैलन, वो चीज जिसकी तरफ दिल झुके। उर्दू में लफ्ज बोलते हैं मैलान, इंक्लाइनेशन। माल को माल कहते ही इसलिए कि इसकी तरफ दिल बड़ा झुकता है। और कभी किसी देहाती से आपका वास्ता पड़ा होता तो गांव के जो लोग हैं, वो जो जानवर होते हैं ना उनके, उनको भी कहते हैं माल डंगर, क्योंकि उनका अपनी भैंसों में दिल अटका रहता है, वो हर वक्त उनकी टेक केयर करते रहते हैं। तो जब तक इस दुनिया से दिल उठकर अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा, बात नहीं बनेगी। अब आप ये सारी बातें सुन के कहेंगे, वाकई वेरी गुड, एक्सीलेंट, पहले भी पता था, आज तो इस आयत ने और आंखें खोल दी। जूं ही आप इस आयत पे अमल करने लगेंगे तो जबद और वाबियन की फिर आप देखिए मुखालफतें शुरू हो जाएंगी। कह के तो देखिए आज घर वालों को कि वीकडेज के साथ वीकेंड भी। अब रमजान आ रहा है तो 5-6 दिन, 7-7 दिन फिर वो शोर उठेगा, ये कैसा दीन है, हाय मैं भूख से मर गया, हाय गरम रोटी नहीं पकती, हाय चूल्हा नहीं, ये कौन सा दीन है, करता हूँ फोन तुम्हारी टीचर को, ये कौन सा दीन है, कभी सुना आपने? अब जब ये शोर होता है ना तो हम ठंडे हो जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, दिल तो बड़ा चाहता है, क्या करें, मुखालफत है। और शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हमारी मुखालफत हो। एक जुमला मैंने कई दफ़ा बोला है, आपको फिर बोल देती हूँ, कि बास लोगों की मुनाफ़त पाबंदियों में छुप जाती है, उन पे पाबंदियां लगती इसलिए कि उनका निफाक ना खुले। पाबंदियां हट भी जाएंगी ना, करना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं, ढूंढेंगे कि अब कोई और आजमाइश आए तो हम उसका नाम लेकर इस चीज़ से पीछे हो जाए। फिर आप देखिए कि इस मिसाल को और भी थोड़ा सा समझते हैं, गौर फिक्र से ही बात समझ आती है ना। आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो वक्त के रिवाज के साथ बहरे होते हैं ना, दीन के नाम पे एक बड़ा फैशनेबल दीन, रिवाजी दीन। कैसा दीन? रबी अव्वल आएगा तो एक बड़ा सा मिलाद रखेंगे और बहुत सारी सिस्टर्स को बुलाएंगे और खूब अच्छी तरह से खिदमत भी करेंगे, कुछ नाते भी पढ़ेंगे। और जब रजब आएगा तो कुंडे भर के खिला देंगे, शाबान आएगा तो शबे बरात के नाम पे एक महफिल सजाएंगे, और रमज़ान आएगा तो अपने टीवी को खूब मोटे मोटे पर्दों में छुपा देंगे और सारा महीना खूब इबादत करेंगे, है ना। इसको कहते हैं रिवाजी दीन, ये ख़ानदानी दीन है जिसपे हमने बचपन से लोगों को देखा। किसी की अम्मा 11वीं का ख़त्म दिलाती होंगी तो वो कहती हैं देखो इस महीने दिला दिया, शुक्र है काम पूरा हो गया। लेकिन एक दूसरा दीन है जो रिवाजी नहीं है, शौरी दीन है, विथ योर कॉन्शियस, शऊर के साथ जब आप दीन पे आते हैं ना तो फिर आप मुखालिफ हैं। किसी लकड़ी को दरिया के रुख पे डाल दें, चंद मिनट में वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगी, लेकिन आप लकड़ी का एक टुकड़ा डालें दरिया में और कहें कि ये ऑपोजिट चले, ये मुश्किल है। असल में जो दीन पे अमल कर रहा होता है ना वो सोसाइटी से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, हम वक्त के रवाज से ऑपोजिट है। मिसाल है कि लोग अपने कामों को करने के आदी हैं, कोई भी मिसाल ले लें, शादी की दूंगी तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ऊपर ले लें इसलिए आज नहीं देती, लेकिन बात बड़ी समझ आती है। हमारा रिवाज है कि हम जब शादियां करते हैं तो हम 6 महीने तक अपने जहन को 3 पहले और 3 बाद के महीने ऑक्यूपाइड रखते हैं, लंबी दावतें पकाते हैं, कई काम होते हैं, दिमाग में सवार है ना कि बस ये काम है तो हम मसरूफ हैं, घर बनाना देख लें, घर से जाना देख लें, हमारा कल्चर है। अब जब सब ये कर रहे हैं और आप इससे ज़रा सा ऑपोजिट बात करते हैं कि भाई आई डोंट आई कैंट, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो फिर लोगों को समझ नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बच्ची की शादी हुई रिसेंटली हमारे पास क्लासेस में, पूरी तरह उसको स्कूल वालों ने कहा कि अल्लाह की बंदी तुम छुट्टी कर लो, वो 7 डेज अ वीक क्लासेस में आती थी। और साथ ही साथ वाले जो होते हैं वो कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेते कि हाँ कोई नहीं कर लो। इवन यकीन करें कि मैं उस बच्ची से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि मैं उसको देखती थी कि कैसे ये लड़की इतनी मशीन लगती है, तो मैंने उसको प्यार में कहा कि अब 2-4 दिन तो घर में रहे, चलो कुछ इसके भी तो काम हो गए। तो क्या सोच के शाम की उसकी शादी स्कूल में ही थी, सुबह भी स्कूल में आई, कहती उस्ताज़ फिर मेरी शादी की बरकत ख़त्म हो जाएगी, अगर मैंने अपनी क्लास छोड़ दी तो मुझे खौफ आता है कि शायद मेरे शौहर के दिल से अल्लाह मेरा प्यार छीन ले, शायद मेरी सास मेरे से उतनी मोहब्बत ना करें। अब ये बात अभी आपको नहीं समझ आएगी, रखी, मैंने कहा क्या आज इनको कोई काम ना देना, और अगले दिन वलीमा था उनका। कभी हम सोच सकते हैं कि उसको किसी काम पे लगाएं? रिलैक्स। लेकिन मुझे बातों में कानों में पता चल रहा है कि आपको तक ये सुबह भी आ रही है। मैंने कहा अपने शौक से आए, दुल्हन बन के आए, बैठे चले, फिर इसको हमने काम नहीं देना। और वाकई बिलीव में अगले दिन सैटरडे था, हमारे स्कूल का बिजिएस्ट डे होता है, उस पर कोई काम नहीं था, लेकिन वो सुबह 9:30 पे मौजूद थी। और उसकी सास बता रही थी कि इसका मियाँ जो अभी मियाँ बनने वाला है यानी शादी से एक दिन, उसको पता है कि सैटरडे को इसने 9 बजे स्कूल जाना है। वो पहले से दूल्हा बनने से पहले तैयार है कि मैंने इसको छोड़ने जाना है। ये बातें नहीं समझ आ सकती मुझे और आपको जब तक इसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा न बने। और जो फिर वो गवाहियां भी देती हैं अपनी खुशियों की, तो मैं कहती हूँ बेटे ये आपके माँ बाप नहीं दे सकते थे आपको, ये अल्लाह की किताब आपको प्यार दे रही है। लोगों से प्यार मिलना है तो अल्लाह ने देना है, खुशी मिलनी है तो अल्लाह ने देनी है। एक बंदा 15 मिनट में अपना काम करके बाजार से आ जाता है और एक 2 घंटे खपता है, और आप कहते शुक्र है छुट्टी की थी क्योंकि यहाँ 2 घंटे लग गए, और दूसरा कहता है नहीं 15 मिनट में जो काम होना था छुट्टी करने की सजा में ये 2 घंटे पे अल्लाह ने मुझे धक्के लगवाए हैं, फिर सही नहीं, फिर अगले दिन वापस करने जाना पड़ेगा। ये हमारी सजाएं होती हैं अल्लाह के रास्ते के कामों को छोड़ने की। नमाजें फौत हो जाएं, आप सोच सकते हैं उस शादी में बरकत होगी? आपकी एक असर की नमाज चली जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अहलो याल घर वाले बीवी बच्चे माल असबाब सब तबाह हो जाए। ये कम नुकसान है किसी के एक असर ख़त्म हो जाए। कहाँ डिले कर करके हम मगरिब के साथ पढ़ें। बात चाहिए कि हम अल्लाह से वही लेंगे, अल्लाह हमें वही देगा जो हम मांगेंगे। अल्लाह प्यार भी तभी देगा जब अल्लाह देना चाहेगा। आप अपने असबाब कोशिशें जमा कर लें फिर लाएं खुशियाँ। इसी के अगले सबक को अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। कभी नहीं मिलता लोगों से, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बताएं कि आप किसी के घरों में ही सोचते जाते हैं कि आज जाके ज़रा इसकी खराबियां देखनी है, इसको बाहर जाके बातें करनी है। कोई नहीं हमसे खुश होगा अगर अल्लाह खुश नहीं है। ये सौदा कर लेंगे ना तो फिर आपको वाकई महसूस होगा। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि जब हम नया नया कुरान सीख रहे हैं, पहली दफ़ा का कुरान जो अंदर हलचल मचाता है, ये जो है ना कि झाग उठी, ये नए ईमान के तोहफे हैं। पहली दफ़ा कहते हैं ना पहला प्यार नहीं भूलता, अब माँ बाप से किया हो तो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, ऐसी है ना पहली मोहब्बत, लव एट फर्स्ट साइट, ये दुनिया की कहानियाँ बनी है। मैं कहती हूँ जो इस किताब को पहली दफ़ा पढ़ते वक्त अंदर हलचल आती है ना, वो दोबारा नहीं आती। नया ईमान तो गर्म कर देता है। इसीलिए आप आज देखिए कि जो कन्वर्ट्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने ईमान दिया है, फिर वो किस तरह एक्टिव हो जाते हैं, किस तरह इस दुनिया में अपने लिए कोशिश करते हैं। और जिसको नए नए ईमान के अंदर ही को जोश नहीं है, ठंडा मीठा सूखा, कभी गीला कभी सूखा, कल क्या करेगा वो? इस वक्त अगर ये किताब पढ़ने के अंदर हमारे दिल में इरादे आते हैं, जोश आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, उधर भी खैर उधर भी, तो आप कहें कि यही आपके लिए इंशाल्लाह ताला एनर्जी बनेगी। और अगर नया ईमान ही फीका, ढीला ढाला ढुलमुल यकीन, ये मुंतज़िर हैं कब जान छूटे, पढ़ लिए फट लिए कर लिए, तो याद रखें हम दुनिया में कोई तब्दीली नहीं पैदा करेंगे। आज हमारा हाल ये कि क्यों अल्लाह आज न्यू मुस्लिम्स को लेके आ रहे आगे, इसलिए कि अल्लाह का फैसला आप सूरत मायदा में सुन चुके हैं कि मैं यरतद मिनकुम अन दीनिही, तुम बोन मुस्लिम्स में से जो अपने दीन को छोड़ता है शौक से छोड़े, अल्लाह डोंट केयर, उसको ज़रूरत नहीं, वो ले आएगा ऐसी कौम, फसौफ़ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह अन करीब वो कौम ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से प्यार करेंगे, अल्लाह के दीन से करेंगे, अल्लाह उनसे करेंगे। क्या आज इस्लाम की हालत देख के आपको लगता है कि मुसलमानों से अल्लाह को प्यार है? इस्लाम से प्यार है। हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह इतना नाराज होगा कि नेक भी दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को नहीं कबूल करेगा। आज कितनी दुआएं हरम में, रमज़ान आने वाला देखिएगा ज़रा तरावियों में जो रो रो के इमाम काबा दुआएं मांगेंगे, तहज्जुदों में किधर लग रही हैं मुसलमानों को। अल्लाह उनको अजर देगा कि इमाम साहब आप ये दुआओं का पटारा लिया, इसके बदले में जज़ाकअल्लाह खैर, फरिश्तों इनको भर दो, लेकिन अब मैं इन मुसलमानों से खुद निपटूंगा। नहीं कबूल होती दुआएं जब तक हम खुद नहीं तड़पते, जब तक हमारे अपने अंदर नहीं है। आप देखिए कि जहां इस्लाम नया नया आया था उसको जरा सोच ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुस्लिम, کیوں نا؟ کیونکہ انا اول المسلمین. اور آپ سورت بقرہ کے آخری آیتوں میں کیا پڑھ چکے؟ آمن الرسول. رسول سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، سب سے پہلے مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ دیکھیں ختیجہ، ورقہ بن نوفل، حضرت ابو بکر صدیق، علی، زید ابن مسعود، یہ ایک سلسلہ چلا. شروع میں کیا تھے؟ مسلمان بہت تھوڑے تھے. شروع میں اسلام ایک ندی نالے کی حیثیت رکھتا ہے، جسٹ لائک ایک سمال، ابھی سمندر نہیں تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ندی نالوں کو راستے خود بنانے پڑتے ہیں. کبھی کسی پہاڑ میں سے نکلتے ہوئے چشمے کو آپ نے دیکھا ہو، سپرنگز جو ہوتے ہیں نا، اس طرح جگہ بنتی ہے. جگہ ہی نہیں دیتے لوگ، پہاڑ جگہ دیتے اگر چشمہ نکلنا چاہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چشمے خود پہاڑوں کے اندر رستے بنا لیتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے پہاڑ آگے آتے ہیں نا، اتنا جوش آگے آتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے کئی چشمے ہیں جو میں نے واک کے دوران ناروے میں دیکھے ہوئے ہیں. شور ہوتا ہے، ہم دور سے چلتے ہیں، واک کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کوئی چشمہ ہوگا. ایسے فلش ہو کے، جیسے فلرش کرتی ہے نا چیز، اس طرح سے پانی نکلتا ہے اور سامنے کی چٹانوں سے ٹوٹتا ہے. ایسے جوش ہوگا تو پھر ہی چٹانیں ٹوٹیں گی نا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ وہ پتھر جو پانی کے پاس ہوتے ہیں وہ کتنے چکنے ہو جاتے ہیں، اتنے سافٹ. یہ جو آپ اور میں بڑے شوق سے سمندر کے کنارے سے لے کے آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ؟ شیلز ہیں اور سیپ ہیں اور موتی ہیں. کل بھی میں نے کسی کے گھر میں دیکھے تو میں نے سوچا کہ میں پوچھوں گی کہ یہ اصلی ہیں، کہ اس کے اندر بالکل اس کا ایک وہ اسکیلٹن سا بنا ہوا ہے کسی جانور کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اصلی ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پانی کے مسلسل پڑنے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد والے پتھر دلوں کیوں نہیں ہیں، آپ ان سے پیار کے ساتھ چلتے جائیں، آپ دیکھیں ان میں ملائمیت آ جائے گی، جوش سے ہر چیز سے. جب نیا ایمان آتا ہے بندہ راستہ نہیں دیکھتا. میرے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ جیسے تیز گاڑی کوئی آ رہی ہے، ٹن ٹن ٹن، اور سب کہہ رہے ہیں اس کو راستہ دے دو، جانے دو جانے دو پلیز، ہم اس کے آگے رہیے، ہمیں پیچھے سے ٹکر مار دے گا. نیا ایمان تو یہ، اور یہ یوتھ کا ایمان ہوتا ہے. بوڑھے تو ایسی باتیں سن کے بھی کہتے ہیں اچھا چلو اب ہماری تو عمر ہی نہیں رہی. جوان جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو ان کے اندر جوش آتا ہے، ایسا جوش پیدا ہوتا ہے قرآن سن کے، تبدیلی آتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہمیں کسی کی فکر نہیں. معاشرہ راستہ نہیں دیتا تو ٹکراتے ہیں، راستہ نہیں بدلتے، چھوڑتے نہیں، راستہ بدل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنا پانی تیزی سے نکلتا ہے نا، انرجی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انرجی بندے کو کام کرنے کا موقع دیتی ہے. اس تازے تازے ایمان کے ساتھ کام کر جائیں، اور جو کر جاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھیں نا زندگی کے ان چار سالوں میں، یقین نہیں آتا یہ میں نے کر لیا، یہ اللہ نے مجھ سے کرا دی. فیصلے لے لیتا ہے انسان بڑے بڑے، ایمان فیصلے کرنا سکھاتا ہے. نو آئی کین ڈو دس، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. کئی دفعہ روایتی رسمی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچیوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شخص تو پانچ وقت نمازی نہیں ہے، میری ماں مجھے اس کے ساتھ باندھنے کا سوچ رہی ہے، یہ ابا میرے صرف اپنے خاندان کی وجہ سے وہاں شادی کر رہے ہیں. اتنی پھر انرجی آتی ہے کہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک مومن اپنے جوش کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کو چکنا کر دیتا ہے. بہت قیمتی ہوتا ہے یہ ایمان، اس کو ضائع کر دیا تو ضائع ہو جائیں گے. زندگی کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ جذبات کے ساتھ انسان دنیا میں ایک بچے کو لانے کا ذریعہ بنتا ہے. ایک بچہ جب ماں باپ کے جذباتی ہیجان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا آپ نہیں سوچ سکتے کہ دنیا میں اسلام کا نام جذبات کے ساتھ نہ ہو؟ شرط ایک ہے، کرتے رہے. رہ گئی باتیں مخالفتیں، یہ باتوں کا طوفان ایک جھاگ ہے، چند دن میں بیٹھ جائے گا. کبھی سرف کے ساتھ کپڑے دھوئیں؟ آگے دھوتے تھے، اب تو لوگ مشینوں میں ڈالتے ہیں نا. آپ دیکھیں جب تھوڑا سا سرف پانی میں ڈال کے، اب یوں کرتے ہیں نا، چن 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 چن، یا اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پورا وہ جو ٹب ہے نا وہ سرف سے بھر گئے. لیکن ایک ہاتھ ماریں ذرا زور کا تو سب جھاگ بھیگ جاتا ہے. یہی ہے ان مخالفتوں کی جھاگ کو ختم کرنے کا طریقہ، ایک مضبوط ہاتھ چاہیے. کل کے مخالف آج کے معاون بن جائیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کے دوست بنیں گے. جیسے پتھر ٹوٹتے ہیں نا تو اس کے ذرے پھر پانی میں ہی شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ پانی کا جوش اور بڑھ جاتا ہے. کبھی سیلاب آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں اتنے کئی فٹ جگہ مٹی کی آ جاتی ہے جو سیلاب کے ساتھ آتا ہے اور وہ زمینوں کو زرخیز کر جاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد والے مخالفوں کو اپنے پیار سے اس طرح توڑے کہ کل وہ آپ کے لیے انرجی بن جائے. دشمن تھوڑی بنانا ہے ہم نے ان کو اپنا بنانا ہے. پھر اس کے ذرے پانی میں آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا.